श्रोताओं, आप सभी का मार्गदर्शक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में अंकित सात चिन्ह नामक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त हो रही है। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे
हालेलुया, हालेलुया। listening friends.
Namaskar shrota mitro.
Welcome to this very last broadcast from the series of messages from the Gospel of John.
Yohanna rachit susamachar par adharit is sandesh shrinkhla ke is bilkul antim prasaran mein aapka swagat hai.
We have been studying together the seven signs or miracles from the Gospel of John.
Hum milkar Yohanna rachit susamachar mein darj saat chamatkar ya chinhon ka adhyayan karte aa rahe hain.
I promised you in the last broadcast that I will talk to you about the raising of Lazarus from the dead.
Pichle prasaran mein maine aapse vaada kiya tha ki main aapke sath Lazar ko mritkon mein se jinda karne ke bare mein baat karunga.
I told you that we are going to hear some great encouragements from this miracle.
Maine aapse kaha tha ki is chamatkar mein se hum kuch mahaan protsahan sunenge.
So let us examine these events in detail.
To aaiye vistar ke sath in ghatnakramon ka vishleshan karte hain.
Religious leaders in and around Jerusalem had threatened to stone Jesus to death if he ever came back to their territory.
Jerusalem aur iske aas paas ke dharmik agwon ne dhamki di thi ki yadi Yeshu fir kabhi us kshetra mein aaya to wo use patthar maar maar ke maar dalenge.
Bethany, where Lazarus and his sisters lived, was less than 2 miles away from Jerusalem.
Bethania, jahan Lazar aur uski behne rehti thi, Jerusalem se 2 mil se bhi kam duri par tha.
And a word comes to Jesus from Mary and Martha, your friend Lazarus, whom you love, is seriously ill.
Aur Maryam aur Martha ka sandesh Yeshu ke paas pahunchta hai ki tera mitra Lazar, jisse tu prem karta hai, bahut bimar hai.
They, like us, when we pray urgently and fervently for something, wanted Jesus to answer immediately.
Hamari hi tarah jab hum kisi baat ke liye shighra aur nirantar prarthana karte hain, unhone bhi chaha ki Yeshu turant uttar de.
Mary and Martha thought Jesus would drop everything and come to Bethany.
Maryam aur Martha ne socha ki Yeshu sab kuch wahin chhodkar turant Bethania chala aayega.
He could have done that, but he didn't.
Wo aisa kar sakta tha, parantu usne nahi kiya.
Was he heartless?
Kya wo bhav rahit tha?
Did he forget?
Kya wo bhool gaya tha?
Was he preoccupied?
Kya wo magan tha?
None of that is true.
Inme se koi baat sach nahi hai.
Look at verses 5 and 6 of John 11.
Yohanna 11 adhyay ke 5 aur 6 pad ko dekhen.
There is something very significant here.
Yahan ek bahut hi mahatvapurna baat hai.
It says that Jesus loved Mary and Martha and Lazarus, so he stayed 2 days longer.
Yahan kaha gaya hai ki Yeshu Maryam, Martha aur Lazar se prem karta tha, isliye wo 2 din tak wahin ruka raha.
You might say, wait a minute.
Shayad aap kahein, rukiye ek minute.
Did you say because he loved them, he did not respond immediately?
Kya aapne kaha, kyunki wo unse prem karta tha, usne turant kuch nahi kiya?
That is exactly right.
Ye bilkul sahi hai.
That's what the Bible said.
Bible yahi kehti hai.
In fact, you notice that the two sisters did not even request that Jesus should come.
Balki aap dhyan dein ki dono behno ne ye nivedan tak nahi kiya ki Yeshu turant chala aaye.
They were confident that the moment Jesus got the word that Lazarus was seriously ill, he would immediately come back to Bethany.
Unhe vishwas tha ki jaise hi Yeshu ko Lazar ki bimari ki khabar milegi, wo turant Bethania chala aayega.
But my listening friends, it did not work that way.
Parantu mere shrota mitra, aisa nahi hua.
It often does not work that way.
Aksar aisa nahi hota hai.
Jesus loved Mary, Martha and Lazarus.
Yeshu Maryam, Martha aur Lazar se prem karta tha.
They were his special friends.
Wo uske khas mitra the.
So he stayed where he was for 2 more days.
Isliye jahan wo tha, 2 din aur wahin ruka raha.
My listening friend, listen very carefully, please.
Mere shrota mitra, kripa bahut dhyanpurvak sune.
It is the purpose of God and not the immediacy of your need that matters the most.
Sabse mahatvapurna hai Parmeshwar ka uddeshya, na ki aapki avashyakta ki gambhirta.
It is the glory of God and not our self-centered requests that matter the most.
Sabse mahatvapurna hai Parmeshwar ki mahima, na ki hamare atmakendrit nivedan.
It is the kingdom of God and not our kingdom that matters the most.
Sabse mahatvapurna Parmeshwar ka rajya hai, na ki hamara rajya.
Because he loved them, he waited 2 more days.
Kyunki wo unse prem karta tha, isliye 2 din aur wahin ruka raha.
There is always a purpose in God's delay.
Parmeshwar ki deri mein hamesha ek uddeshya hai.
I can imagine the sisters how they spent their time immediately prior to Lazarus' death.
Main un behno ki kalpana kar sakta hu ki Lazar ki mrityu se turant pehle unhone apna samay kis dasha mein bitaya hoga.
They were alternating between caring for their sick brother and looking down the road to see if the master was coming.
वो बारी बारी से अपने बीमार भाई की देखरेख कर रही थी और कभी बाहर जाकर मार्ग की ओर देख रही थी कि उनका स्वामी आ रहा है या नहीं.
Unto their utter bewilderment, Jesus did not come and Lazarus died.
उन पर पूरी तरह से घबराहट छा गई, यीशु नहीं आया और लाजर की मृत्यु हो गई.
Jesus told the disciples that Lazarus had died and that they should go to him.
यीशु ने शिष्यों से कहा कि लाजर मर गया है और उन्हें वहां जाना चाहिए.
Thomas, the pessimist, realizing that going anywhere near Jerusalem spells trouble for them.
निराशावादी थोमा ने सोचा कि यरूशलेम के आसपास जाना भी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा.
Said in a typical fashion.
उसने जाने पहचाने अंदाज में कहा.
That is it. We are going to die. It's all over, man.
चलो हम मरने जा रहे हैं, सब खत्म हो गया.
But listen to Jesus' response.
परंतु यीशु की प्रतिक्रिया सुनिए.
Are there not 12 hours in the day?
क्या दिन में 12 घंटे नहीं हैं?
If the man walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world.
यदि कोई मनुष्य दिन में चलता है तो वो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो इस संसार की ज्योति को देखता है.
What does that mean?
इसका क्या अर्थ है?
It means that Jesus is telling his disciples that yes, we are going back to the region of Judea.
इसका अर्थ है कि यीशु अपने शिष्यों को बता रहा है कि हाँ, हम वापस यहूदिया के क्षेत्र में जा रहे हैं.
But you don't need to be afraid.
परंतु तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है.
There will be no stumbling.
कोई ठोकर नहीं लगेगी.
There will be no accidents.
कोई दुर्घटना नहीं होगी.
Hostility cannot touch me until my hour has come.
विरोध मुझे नहीं छू सकता जब तक कि मेरा समय नहीं आता.
I am walking in the light and not in darkness.
मैं ज्योति में चलता हूँ, अंधकार में नहीं.
No one can lay a finger on me until my hour has come.
कोई मुझे छू भी नहीं सकता जब तक कि मेरा समय नहीं आता.
So by the time they reached Bethany, Lazarus had been dead for 4 days.
तो जब तक वो बेतनिया पहुंचे, लाजर को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे.
His body was beginning to decompose.
उसका शरीर सड़ना शुरू हो चुका था.
In those days, the ritual of mourning peaked on the 3rd day.
उन दिनों में तीसरे दिन सबसे ज्यादा विलाप होता था.
So by the 4th day, they were totally exhausted from crying and weeping and wailing.
तो चौथा दिन होते होते वो रोने और विलाप करने से पूरी तरह थक चुके थे.
And true to form, that is exactly when Jesus comes in.
और सच है कि इसी समय यीशु प्रवेश करता है.
He comes in when they had totally and utterly exhausted themselves.
वो अंदर आया जब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से क्षीण कर लिया था.
Martha gets the word that Jesus is coming.
मार्था को पता चलता है कि यीशु आ रहा है.
So she tosses out the cultural practice of staying home for 40 days after the funeral. And runs down the street to meet Jesus.
तो वो अंतिम क्रिया के बाद 40 दिन तक घर में ही रहने की रीति की परवाह किए बिना सड़क पर दौड़ते हुए यीशु से मिलने चली जाती है.
Mary obeys the cultural mores of that day and stays home.
मरियम उस समय की सांस्कृतिक प्रथा का पालन करते हुए घर में ही रुकती है.
As soon as she sees Jesus, she blurs out the words of disappointment.
जैसे ही वो यीशु को देखती है, उसके मुंह से निराशा के शब्द निकलने लगते हैं.
She blurs out words of anguish and hopelessness.
वो अपनी निराशा और वेदना को बयान करती है.
You can feel the sting, can you not?
आप पीड़ा को महसूस कर सकते हैं क्या नहीं?
She said, "Had you been here, Lazarus would still be alive."
उसने कहा, यदि तू यहाँ होता, तो लाजर जिंदा होता.
But Jesus teaches her that he is the life and the resurrection.
परंतु यीशु उसे सिखाता है कि वो ही जीवन और पुनरुत्थान है.
Jesus teaches her that for those who put their trust in him, death is not the last word.
यीशु उसे सिखाता है कि वो जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है.
Death does not have the final say.
मृत्यु विजयी नहीं हो सकती.
Death is not the end.
मृत्यु अंत नहीं है.
Because my listening friends, Jesus is the only one who defeated death.
क्योंकि मेरे श्रोता मित्रों, केवल यीशु ही है जिसने मृत्यु को हराया.
In Jesus, death has been conquered.
यीशु में मृत्यु को जीत लिया गया है.
In Jesus, the jaws of death have been broken and the teeth have fallen out.
यीशु में मृत्यु के जबड़े तोड़ दिए गए हैं और उसके दांत बाहर गिरा दिए गए हैं.
In Jesus, the power of death has been demolished.
यीशु में मृत्यु की शक्ति नाश कर दी गई है.
A funeral for a believer in the Lord Jesus Christ should be a celebration.
प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वासी के लिए अंतिम क्रिया एक उत्सव होनी चाहिए.
Never do I see death to the believer as a master.
एक विश्वासी के लिए मैं मृत्यु को कभी स्वामी के रूप में नहीं देखता.
Death for the believer is the servant that carries us home.
विश्वासी के लिए मृत्यु एक दास है जो हमें घर लेकर जाता है.
Death to the believer is only the gatekeeper that opens the gate for the king's guests.
एक विश्वासी के लिए मृत्यु एक द्वारपाल के समान है जो राजा के अतिथियों के लिए द्वार खोलता है.
And I want to point out to you three things before my time runs out.
और इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो जाए, मैं तीन बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ.
First,
पहली,
in verse 33, Jesus groans in his spirit.
33 पद में यीशु अपने आत्मा में व्याकुल हुआ.
In Greek, this is the awesome word that almost untranslatable.
यूनानी भाषा में यह एक अद्भुत शब्द है जिसका अनुवाद करना लगभग असंभव है.
The closest we can get to it in the English language would be this.
अंग्रेजी भाषा में यदि हम इसके आसपास भी जा पाएं, तो इसका अनुवाद ये होगा.
He snorted with anger like a horse.
वो गुस्से में घोड़े के समान फुफकारा.
It expresses a violent displeasure.
ये शब्द तीव्र अप्रसन्नता को दिखाता है.
It expresses the notion of indignation.
ये रोष के विचार को प्रकट करता है.
I am convinced that the reason for his anger and indignation is the root cause of death, that is sin itself.
मुझे यकीन है कि उसका गुस्सा और रोष करने का कारण मृत्यु का मुख्य कारण है, वो है पाप.
James said in James 1:15.
याकूब की पत्री एक अध्याय के 15 पद में याकूब कहता है,
When lust has conceived, it brings forth sin, and when sin is finished, brings forth death.
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है.
And that is why only those whose sins are forgiven will have eternal life.
और इसीलिए केवल वही जिनके पाप क्षमा हो गए हैं अनंत जीवन पाएंगे.
Hell, which is eternal death, awaits all those who reject Jesus Christ.
नरक जो कि अनंत मृत्यु है, उन सब की प्रतीक्षा में है जो यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं.
Hell, which is eternal death, awaits all those who refuse to come to Jesus Christ.
नरक जो कि अनंत मृत्यु है, उन सब की प्रतीक्षा कर रहा है जो यीशु मसीह के पास आने से इनकार करते हैं.
Someone said that there are seven simple facts that everyone ought to know about sin.
किसी ने कहा है कि पाप के बारे में सात साधारण तथ्य हैं जो हर किसी को जानने जरूरी हैं.
Sin earns wages.
पाप की मजदूरी मिलती है.
Sin pays wages.
पाप मजदूरी देता है.
Sin insists on paying.
पाप मजदूरी देने पर जोर देता है.
Sin pays wages in kind.
पाप एक प्रकार से मजदूरी देता है.
Sin pays in installments.
पाप किश्तों में मजदूरी देता है.
Sin pays in full.
पाप पूरा देता है.
Unless the blood of Jesus washes away the stain.
जब तक यीशु का लहू दाग को नहीं धोता.
Finally, sin is self-executive. It pays its own bills.
अंततः पाप खुद स्वामी है, ये अपना हिसाब खुद चुकाता है.
The logical result of sin is death.
पाप का तार्किक परिणाम मृत्यु है.
Death to the body, death to the mind, death to the soul.
देह की मृत्यु, मन की मृत्यु और आत्मा की मृत्यु.
That is why Jesus snorted at death.
इसीलिए यीशु वहाँ मृत्यु पर व्याकुल हुआ.
The second thing I want to point out to you about this miracle is in verse 39.
दूसरी बात जो इस चमत्कार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो 39 पद में है.
Jesus asked them to remove the stone.
यीशु ने उन्हें कब्र के मुंह से पत्थर हटाने के लिए कहा.
You would think that the one who raised the dead could with click of his finger remove the stone.
आप सोचेंगे कि जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो अपनी उंगली की छुअन से पत्थर को भी हटा सकता था.
But he didn't.
परंतु उसने ऐसा नहीं किया.
Instead, he asked those who were alive standing there to do it.
इसके बजाय उसने जो वहाँ जीवित खड़े थे उन्हें ऐसा करने के लिए कहा.
And that is why we Christians are responsible to tell others about Christ.
और इसीलिए दूसरों को मसीह के बारे में बताना हम मसीहियों की जिम्मेवारी है.
Because before God can call out those who are dead in trespasses and sin,
क्योंकि इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें पुकारे जो अपराधों और पापों में मरे हुए हैं,
He asked those who are spiritually alive to roll away the stone.
वो उनको जो आत्मिक रूप से जीवित हैं पत्थर को हटाने के लिए कहता है.
Every one of us can play a role in rolling away the stone.
हम में से हर कोई पत्थर को हटाने के कार्य में योगदान दे सकता है.
No matter how big or how small it may be.
चाहे ये पत्थर कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो.
Some pray.
कुछ प्रार्थना करते हैं.
Some give.
कुछ देते हैं.
सम इवेंजलाइज,
कुछ सुसमाचार सुनाते हैं,
सम विटनेस,
कुछ गवाही देते हैं,
सम वेलकम पीपल,
कुछ लोगों का स्वागत करते हैं,
सम एक्सटेंड हॉस्पिटैलिटी,
कुछ पहुनाई करते हैं.
व्हाटएवर आवर रोल इज इन रोलिंग अवे द स्पिरिचुअल स्टोन्स, दैट इज व्हाट जीसस इज आस्किंग अस टू डू.
आत्मिक पत्थरों को हटाने में हमारी कोई भी भूमिका हो, यीशु हमें यही करने के लिए कह रहा है.
The third point in this miracle that I want you to look at is in verse 44.
इस चमत्कार में चौथी बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें वो 44 पद में है.
After he called out Lazarus by name and Lazarus comes out of the grave, Jesus said, loose him and let him go.
लाजर को नाम लेकर पुकारने और लाजर के कब्र से बाहर आने के बाद यीशु ने कहा उसे खोलो और जाने दो.
Someone once said that it was just as well Jesus mentioned Lazarus by name.
किसी ने एक बार कहा कि अच्छा हुआ कि यीशु ने लाजर को नाम लेकर पुकारा.
Had he just said come out?
यदि उसने सिर्फ इतना ही कहा होता बाहर आ जाओ,
every dead corpse would have walked out of the tomb.
तो वहां से हर मुर्दा बाहर आ जाता.
Jesus said, loose him and let him go.
यीशु ने कहा उसे खोलो और जाने दो.
Now I want you to imagine Lazarus stumbling out of the grave.
अब मैं चाहता हूं कि आप लाजर की कब्र में से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने की कल्पना करें.
Because of the Jewish custom of wrapping the body before they bury it, Lazarus could not easily walk.
लाश को दफनाने से पहले लपेटने की यहूदी परंपरा थी और लपेटे होने के कारण लाजर आसानी से चल नहीं पा रहा होगा.
Here he is, his heart just began pumping again.
यहाँ वो बाहर आ गया है और उसका दिल अभी अभी फिर से धड़कना शुरू हो गया है.
His arteries have just began to pulsate once more.
उसकी धमनियाँ एक बार फिर कार्य करने लगी हैं.
His muscles have begun to move again.
उसकी मांसपेशियाँ फिर चलने लगी हैं.
So he shuffles out of the tomb bound hand and feet.
तो हाथ पैर बंधे हुए वो लड़खड़ाता हुआ गुफा में से बाहर आता है.
And Jesus said, loose him and let him go.
और यीशु ने कहा उसे खोलो और जाने दो.
This is not unlike what happens to us spiritually.
ये उससे भिन्न नहीं है जो हमारे साथ आत्मिक रूप से होता है.
When the Holy Spirit of God quickens our spirit and we are converted to Christ.
जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को कायल करता है और हम मसीही बन जाते हैं.
In the beginning of our Christian life, we are still walking around with grave clothes that are hampering us in our Christian walk.
तो हमारे मसीही जीवन की शुरुआत में हम कब्र के उन कपड़ों के साथ ही चलते फिरते रहते हैं जो हमारी मसीही चाल को बिगाड़ते हैं.
There are those sins from our past.
हमारे अतीत के पाप साथ में चलते रहते हैं.
There are those habits from our life without Christ.
वो आदतें बनी रहती हैं जो मसीह रहित हमारे जीवन में पहले थी.
All these things are hampering your growth in your Christian walk.
ये सब बातें आपकी मसीही चाल में आपकी बढ़ोतरी में बाधा बनती हैं.
There is a napkin on your face that is blocking your view.
आपके चेहरे पर एक रुमाल है जो आपके देखने में रुकावट बना हुआ है.
There are grave clothes that have your hands bound so that you cannot work effectively.
कब्र के ऐसे कपड़े हैं जिनसे आपके हाथ बंधे हुए हैं ताकि आप प्रभावपूर्ण रीति से कार्य न कर सकें.
There are the bandages that are binding your feet so you cannot walk well.
ऐसी पट्टियां हैं जिनसे आपके पैर बंधे हुए हैं इसलिए आप अच्छे से चल नहीं सकते.
And Jesus' word to us today, be loosed in Jesus' name.
और आज हमारे लिए यीशु का संदेश है यीशु के नाम में खुल जाओ.
Some people have asked the following question.
कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं.
Is the raising of Lazarus from the dead the same as the resurrection of the Lord Jesus Christ himself?
क्या लाजर को मृतकों में से जिलाना वैसा ही है जैसे खुद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान?
And the answer is no.
और उत्तर है नहीं.
The raising of the son of the widow of Nain
की विधवा के पुत्र को जिलाते हुए,
in the raising of the daughter of Jairus,
जैरस की बेटी को जिलाने में,
and in the raising of Lazarus,
और लाजर को जिंदा करते हुए,
Jesus demonstrated his power over death and the grave.
यीशु ने मृत्यु और कब्र पर अपनी शक्ति को दिखाया.
While Jesus raised them from the dead, they all died again.
जबकि यीशु ने उनको मृतकों में से जिंदा किया कुछ समय बाद वो फिर मरे.
But Jesus' own resurrection was more than just demonstrating of his power.
परंतु यीशु का अपना पुनरुत्थान मात्र उसकी शक्ति को प्रकट करने से कहीं बढ़कर था.
Jesus' resurrection was the complete defeat of death.
यीशु का पुनरुत्थान मृत्यु की पूर्ण पराजय थी.
It was the complete destruction of the power of death.
ये मृत्यु की शक्ति का पूर्ण नाश था.
He rose never to die again.
वो फिर कभी न मरने के लिए जी उठा.
It is the utter devastation to the sting of death.
ये पाप के डंक का पूर्ण नाश था.
The resurrection of the Lord Jesus Christ is God's assurance to every one of us who believe.
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबको जो विश्वास करते हैं परमेश्वर का आश्वासन है.
That we too will be resurrected.
कि हम भी जिलाए जाएंगे.
The resurrection of the Lord Jesus Christ is God's promise to us who love him.
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबके लिए परमेश्वर का वादा है जो उससे प्रेम करते हैं.
That we too will not experience eternal death.
कि हम भी अनंत काल की मृत्यु का सामना नहीं करेंगे.
Do you have that assurance?
क्या आपके पास ये निश्चय है?
Well, you can be assured of this today.
तो आप आज ही इसका निश्चय पा सकते हैं.
When you surrender your life to the Lord Jesus Christ.
जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पण करते हैं.
When you accept his resurrection to be for you.
जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि उसका पुनरुत्थान आपके लिए था.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है. यदि आप जीवित परमेश्वर या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमसे तुरंत संपर्क करें. और हाँ श्रोताओं, हम आपको उपहार स्वरूप एक पुस्तक भेज रहे हैं. यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुरंत हमें इस पते पर संपर्क करें. हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शक, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश. पता एक बार फिर से सुन लीजिए. कार्यक्रम मार्गदर्शक, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश. और हाँ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है md.hindi@twr.in. एक बार फिर से सुन लीजिए, md.hindi@twr.in. तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. परमेश्वर आपको आशीष दे.